तो हमने 10 अपराध के बारे में सुना, 10 अपराध के बारे में सुना। अब हम लोग इसका हल बताएंगे एक एक करके, एक एक अपराध का हम हल बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 जो गुण हैं, अगर हम लोग इसको अंगीकार कर लें तो हम लोग नाम अपराधों से बच सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? नम्रता, सहनशीलता और मान शून्यता, यानी कि मान की इच्छा न रखना और दूसरों को सदा मान देना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वैदिक भक्ति से राग मार्ग में जाने के लिए हमें इस श्लोक को पार करके जाना पड़ेगा। ये चैतन्य महापुरुष की शिक्षाओं में जो महापुरुष ने स्वयं लिखा अपने हाथों से, गंभीरा में जगन्नाथपुरी में चैतन्य महापुरुष ने स्वयं अपने हाथों से लिखा, केवल 8 श्लोक लिखे, उसको शिक्षाष्टक कहते हैं, शिक्षाष्टकम। उसमें जो तृतीय श्लोक है वो हमें सूचना देता है निष्ठिता भक्ति का। निष्ठिता भक्ति का मतलब यह है जब हम लोग अनर्थों से निवृत्त हो जाते हैं तो हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा निष्ठा, और उसके बाद फिर निष्ठा यानी कि अनर्थ निवृत्ति के बाद। जैसे श्रीमद् भागवत में भी ये बताया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। प्राय अभद्र दूर हो जाते हैं भागवत व्यक्ति भागवत पुस्तक की सेवा करने से, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। और भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर भवति नैष्ठिकी, और ऐसा करने से क्या होगा? नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होगी, निष्ठा के सर्व पहुंचेगी। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें भक्ति सामर सिंधु का ही विज्ञान दिया गया है, और श्रील रूप गोस्वामी ने इसको एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उन्होंने स्वयं श्री चैतन्य महापुरुष से पार प्राप्त किया। तो ये जो 4 जो योग्यताएं अगर हमने जागृत कर लें तो समझ लीजिए कि हम लोग बड़ी आसानी से अपराध रहित हो जाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में ये लिखा है कि इस श्लोक की माला बना के हमें अपने गले में डालना चाहिए। इस श्लोक की माला बना लें, ये माला नहीं, ये तो प्रसादी माला है, लेकिन एक माला और होनी चाहिए जिसमें ये 4 जो बातें बताई गई हैं उसको हम लोग उसका विकास करके उसकी माला बना के हम लोग पहने हमेशा, और याद दिलाएं बार बार अपने आप को कि ये है 4 योग्यता। ये योग्यता है उस भक्त की जिसने भक्ति में मध्यम अधिकार प्राप्त कर लिया है। जो मध्यम अधिकारी है उसमें ये गुण होते हैं। कोई कहता है कि मैं मध्यम अधिकारी हूं, मैं बहुत एडवांस्ड हूं, है ना, तो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। तृणादपि सुने चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। बातें हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं लेकिन अगर ये गुण नहीं है तो क्या है? कनिष्ठ अधिकारी। और इसका प्रमाण कौन क्या है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। अर्चायाम एव हरे पूजाम श्रद्धा ये हते, है ना, न तद भक्तेषु च अन्येषु सप्राकृत स्मृता। श्रीमद् भागवतम कहता है कि जो ये नहीं जानते हैं कि कैसे भक्तों से व्यवहार करना है और अन्य अतिथियों से कैसे व्यवहार करना है, भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, तो वो भक्त प्राकृत भक्त कहलाता है। वो भक्त है लेकिन प्राकृत अवस्था में। प्राकृत का होता है जड़, भौतिक, कनिष्ठ। तो अधिकांश जो भक्त हैं वो कनिष्ठ अवस्था में होते हैं या वैश्य समाज में प्रवेश करते हैं और क्रमशः हम धीरे धीरे विकास करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें बहुत सावधानी से इन गुणों को जागृत करते रहना चाहिए। अगर हमारे पास ये गुण है भी नहीं तो इन गुणों का हमें अभ्यास करना चाहिए। गीता में भगवान ने ही बोला है, बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल, है ना, कि अगर हम लोग निरंतर अभ्यास करेंगे वैराग्य के साथ तो क्या होगा, हम लोग इस निष्ठा के स्तर पर पहुंच सकते हैं। जब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचते तो इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं नाम अपराध हो रहे हैं और हम अनर्थों से भरे हुए हैं, कम से कम स्थूल अनर्थों से भरे हुए हैं और कई ऐसे सूक्ष्म अनर्थ हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें बचना चाहिए नाम अपराधों से। पहला तरीका क्या है साधु निंदा से बचने का, क्या तरीका है बताइए, कौन बताएगा? हाँ, साधु निंदा, इसे कैसे बचे हम लोग? साधु निंदा से बच सकते हैं हम साधु का गुणगान करके, वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, इष्ट गोष्ठी जिसको ये कहते हैं, जिसमें हमारे हम अपनी इष्ट की चर्चा करते हैं। राधा पारसार्थी हमारी इष्ट है, वास्तविक जो इष्ट गोष्ठी है उसका अर्थ यह है जिसमें अपने इष्ट की चर्चा हो और वैष्णव की चर्चा हो जो हमें इष्ट तक पहुंचा रहे हैं, और वैष्णव का गुणगान हो ऐसी सभा में, कोई किसी का गुणगान करे कोई किसी का गुणगान करे, ऐसी सभा में जहाँ वैष्णव का गुणगान होता है वहाँ पे हमारी भक्ति का विकास होता है। लेकिन ऐसी सभा में जहाँ वैष्णव की निंदा होती है वो हमें भक्ति से दूर भगाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भक्त होते हैं, वास्तव में जो भक्त बनने का प्रयास करते हैं वो निंदा रहित होते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यही सुझाव दिया उपदेशामृत में, क्या बोला है, अन्य निंदादि शून्यम हृदयम इप्सिता संगम लब्ध्या शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें ऐसे भक्त का संग करना चाहिए, ऐसे भक्त की सेवा करना चाहिए जो भगवत सेवा में तत्पर है, भगवत सेवा में विज्ञ है और उसका हृदय अन्यों की निंदा से रहित है। ये श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया। तो हो सकता है कोई बड़ी बड़ी कथाएं तो कर रहा हो लेकिन साथ में अगर वो साधु निंदा कर रहा है, वैष्णव निंदा कर रहा है, तो वो पहले नाम अपराध से ही नहीं बचा है कि नहीं? और आपने अगर पहले सुना होगा इस साधु निंदा के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो है बहुत ही भयानक अपराध है, ये साधु निंदा केवल नाम अपराध नहीं है, ये वैष्णव अपराध है ना? तो इस समय बचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा हमें इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही सभी अवतारों के कारण है कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और साथ में इस बात पे भी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, कोई भी देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, वो सब भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। और तीसरा, गुरु और अवज्ञा, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, गुरु को शुद्ध भक्त ना मानना, है ना, और गुरु को अपने मन से, मन के आधार पर उनके भक्ति के विकास को नापना। आसान है, ऐसा हमने अभी क्या बताया कि कनिष्ठ भक्त जो है वो नहीं जानता है कि कैसे भक्तों से व्यवहार करें और अतिथियों से कैसे व्यवहार करें। तो कनिष्ठ भक्त वो नहीं पहचान पाता है कि वैष्णव कौन है। ठाकुर भक्तिरोध ने पूछा है, एक प्रश्न पूछा उठाया है जय धर्म में, दो भक्तों के बीच में संवाद है, वो एक प्रश्न पूछता है कि कौन वैष्णव सेवा कर सकता है, वैष्णव सेवा का अधिकार किसको है, किसके पास योग्यता होती है वैष्णव सेवा करने की। तो ठाकुर भक्तिरोध ने बताया है वैष्णव सेवा करने का अधिकार, वैष्णव सेवा करने का अधिकार जो है वो किसको है, मध्यम अधिकारी भक्त को है। मध्यम अधिकारी भक्त जिसने निष्ठा का स्तर प्राप्त कर लिया है, जो अनर्थों से निवृत्त हो चुका है, वो पहचान सकता है कि कौन वैष्णव है, कौन कनिष्ठ वैष्णव है और कौन उत्तम अधिकारी है, और इस कारण से वो उनकी सेवा करता है। उत्तम अधिकारी की सेवा करके खुद वो आगे बढ़ता है और कनिष्ठ भक्तों को अपना संग दे के वो कनिष्ठ भक्तों को वैष्णव की सेवा में लगाता है। तो कनिष्ठ भक्त खुद अपने आप वैष्णव सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कनिष्ठ भक्तों को वैष्णव सेवा में लगाया जाता है। तो मध्यम अधिकारी भक्तों के पास ये योग्यता होती है। तो ये भक्तों ठाकुर ने समझाया बहुत अच्छी तरह से। तो कहने का अर्थ यह है कि हम नहीं पहचान सकते कि गुरु कौन से स्तर पर है। अगर हम अपने मन से मनोकल्पना कर लें कि गुरु इस स्तर पर हैं, तो निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे। क्योंकि जयधर्म में भक्तों ठाकुर ने यह भी लिखा है कि कनिष्ठ भक्त इस प्रकार जानकारी अगर प्राप्त कर ले कि कौन उत्तम वैष्णव है, कौन मध्यम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ भक्त है, मतलब किताब पढ़ के, और अगर वो करने लग जाए, हाँ नित्य किशोर तो मध्यम अधिकारी है, मधुमंगल कनिष्ठ है, अचिंत्य तत्प्रभो उत्तम वैष्णव है, वो कनिष्ठ है, तो ये भक्ति ठाकुर कह रहे हैं ऐसे इसमें नहीं फंसना है। ये अधिकार जो है कनिष्ठ भक्तों को नहीं है, वो अपराध हो जाएगा। जब धर्म भक्ति ठाकुर ने स्पष्ट इस बात को वर्णन किया इसके बारे में। तो और गुरु को, गुरु के बारे में बताना कि गुरु मेरे गुरु ऐसे हैं, मेरे गुरु ऐसे नहीं हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध, उनको साधारण व्यक्ति समझना। इसलिए ठाकुर भक्तों ने हरिनाम चिंतामणि में दिया, जो नाम गुरु हैं या जो दीक्षा देते हैं उनको कभी एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही संबंध ज्ञान जागृत होता है, वही हमें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, एक अयोग्य शिष्य का लक्षण यह है कि वो गुरु की अवज्ञा करता है, और एक अयोग्य शिष्य का ये भी लक्षण है कि आज्ञा मिलने पर बहुत विलंब करता है आज्ञा का पालन करने में। गुरु ने आज्ञा दी और एक साल लगा दिया उस आज्ञा का पालन करने में, तो ये भी अयोग्य भक्त का लक्षण है, अयोग्य शिष्य का लक्षण है। इस कारण से भी वो प्राकृत अवस्था से उठ नहीं पाता है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसाम सिंधु में, वन मस्ट करेक्ट द मेंटालिटी ऑफ बीइंग अ नियोफाइट। ज्यादा समय तक कनिष्ठ अवस्था में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इस अवस्था में अपराध होते हैं। इसलिए गुरु कृपा से, गुरु की सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके यथारूप जल्दी इस अवस्था से आगे बढ़े, तब तो हम भक्ति में रह पाएंगे। अधिकांश जो भक्त लोग भक्ति से च्युत होते हैं, भक्ति आंदोलन को छोड़ के जाते हैं, भक्तों के संघ को छोड़ के जाते हैं, वो निष्ठा के स्तर पर पहुंचे ही नहीं होते। इस कारण से वो भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि एक जैसे अनर्थ बताया है, साधन साध्य भ्रम। कनिष्ठ भक्त को ये नहीं पता होता है कि साध्य क्या है, अगर उसको साध्य पता है तो उसकी साधना क्या है उसके बारे में ठीक जानकारी नहीं है, तो इस कारण से वो भ्रमित रहता है, और भ्रमित होने के कारण वो गुरु को भी एक साधारण व्यक्ति सोच लगता। तो गुरु और अवज्ञा ये बहुत भयानक अपराध है, और ऐसी अवज्ञा करने से क्या होता है कि हमें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे एक हमने बताया था, हमने सुना था प्रभुपाद जी के शिष्य से, हाल ही में प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक भक्त आया प्रभुपाद से, बोला वो कुछ बाबा जी लोगों का संग करता था, तो उसने बोला प्रभुपाद से कि प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक सही गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक रियल गुरु मिल जाए। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें 1 करोड़ जन्म के लिए गुरु नहीं मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रही नहीं। और आज वो व्यक्ति जो है उनका वेबसाइट खुला है, और अब आप जाके देखेंगे तो वो नास्तिक बन चुका है। भक्त तो दूर की बात है, वो नास्तिक बन गया है, उसको विश्वास भी नहीं कि भगवान है करके। देखो हाँ, वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ वो आप अलग से डिस्कस कर लो। तो कहने का अर्थ ये है कि आप देखिए गुरु अपराध से, गुरु अवज्ञा से क्या हालत होती है, ना भयानक उसका परिणाम मिलेगा। वैष्णव अपराध और गुरु अपराध भक्तिलता बीच को खत्म कर देता है, हम कहीं के नहीं रह जाते। और आज के समय में प्रभुपाद ने जो संस्था बनाई है, ये संस्था सबसे सुरक्षित संस्था है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम के 34 खंड में कई तात्पर्य में कहीं लिखा है, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं वहां पर, प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद कहते हैं एनी एक्टिविटी outside this Krishna consciousness movement, it's simply hallucination. Hallucination का मतलब होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं इस कृष्ण भावना आंदोलन के बाहर जो भी आप आध्यात्मिक कार्य करें वो केवल हेलुसिनेशन है. हेलुसिनेशन का मतलब होता है जब व्यक्ति बीमार होता है मानसिक रूप से, या भूत पकड़ लेता है किसी को, या बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारी हो जाती है, तो उस अवस्था में ऐसा लगता है कि पीछे से कोई बोल रहा है, और पीछे आप मुड़ के देखोगे तो कोई भी नहीं है. ऐसे कई मेंटल डिजीजेस हैं. एक मेंटल डिजीज है स्किज़ोफ्रेनिया. ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज में हेलुसिनेशन होते हैं कई बार, और ऐसा लगेगा पीछे से कोई बोल रहा है, तो पीछे से कोई है ही नहीं, और भूत पकड़ लेता है किसी को तो क्या हालत होती है, वो नहीं बोल रहा कुछ, भूत बोल रहा है. तो इसी तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं इस कृष्ण भावना आंदोलन के बाहर अगर कोई अभ्यास कर रहा है तथाकथित कृष्ण भक्ति का, तो केवल क्या है, वो हेलुसिनेशन है. उसको लग रहा है वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति का आभास में नहीं है उसको. तो इस प्रकार हमारे आचार्य लोग हमें सतर्क कर रहे हैं कि हम लोग सही रास्ते पर चलें और गुरु अवज्ञा न करें. और आगे बताया यहाँ पर चौथा नाम अपराध के बारे में, इससे कैसे बचा जाए. शास्त्रों का जब खंडन करते हैं तो वही उपाय है कि उन्हीं शास्त्रों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए. जैसे कि श्रीमद् भागवत, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरये, है कि नहीं. श्रीमद् भागवत, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भाव कहा, है ना. ये तो सभी शास्त्रों का, वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम. इस तरह से हमें प्रशंसा करनी चाहिए भागवतम की. भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि वैष्णवों का सबसे प्रिय ग्रंथ है ये. भागवत में लिखा है कि भागवत श्रीमद् भागवतम वैष्णवों को बहुत प्रिय है. एक बार कोई अगर श्रीमद् भागवत पढ़ लेगा तो फिर वो पढ़ता ही रहेगा. श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ है वो सबसे प्रिय है. चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को बहुत ही महत्व दिया. तो श्रीमद् भागवतम में ही श्रीमद् भागवतम की महिमा भी दी गई है. तो इस प्रकार हमें इन ग्रंथों का गुणगान करना चाहिए, विशेष रूप से जिसमें भगवान कृष्ण की विशुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है. और अन्य शास्त्र भी जो हैं, जैसे चार वेद, अन्य पुराण, उपनिषद, इनका भी खंडन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवात्माओं के दृष्टिकोण के आधार पर लिखे गए हैं कि सभी प्रकार के जीवात्माएं हैं जो अलग अलग चेतना, अलग अलग स्तर की चेतना में है, उनका क्रमशः विकास कैसे किया जाए. तो इस तरह से उनके लिए भी शास्त्रों की रचना की गई है. तो इसलिए हमें किसी शास्त्र का खंडन नहीं करना चाहिए. और जैसे जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, जिनकी भविष्यवाणी महाभविष्य पुराण में की गई है, और क्रिश्चियनिटी में जैसे बाइबल है, और इस्लाम में जैसे कि कुरान है, इन ग्रंथों का भी खंडन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इन ग्रंथों का खंडन करने से क्या होता है कि हम लोग भगवान के संदेश का खंडन कर रहे हैं जो कि देश काल पात्र के अनुसार दिया गया है. हमें श्रीमद् भागवतम मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अन्य जो शास्त्रों का खंडन करना शुरू कर दें. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है. तो इस प्रकार हमें सदा इन शास्त्रों का गुणगान करना चाहिए. पांचवा क्या है? पांचवा ये बता रहे हैं हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, क्योंकि हरिनाम की महिमा जो है वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविकता है. अजामिल की जो कथा है जिसमें वो उनको नामाभास होता है, संकेत नामाभास, अपने पुत्र नारायण को पुकार के, है ना, तो वो स्थिति जो है साधारण स्थिति नहीं. जिस दिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, वास्तव में उसी दिन से उनके पाप करना शुरू हो गए. और उनको, उनका जब शरीर छोड़ने का समय आया और यमदूत आ गए, तो उनको क्या हुआ, उनको संकेत नामाभास हो गया. तो नामाभास के कारण क्या हुआ, उनके सारे पाप कट जल के राख हो गए, और तुरंत ही वहां विशुद्धों भी प्रकट हो गए, और विशुद्धों ने अजामिल को यमदूतों से बचाया. प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे हमारे इसके श्याम सुंदर प्रभु ने बताया था ये भी कि प्रभुपाद जो है अजामिल के ऊपर कुछ लेक्चर्स दे रहे थे, अजामिल की कथा के ऊपर लेक्चर सीरीज दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने लेक्चर में बोल रहे हैं प्रभुपाद ने कहा कि अजामिल अपने बेटे को पुकारता, नारायण मेरे जूते लेके आओ, नारायण मेरा प्रसाद लेके आओ, नारायण जरा कपड़े लेके आओ, नारायण ये लेके आओ। तो प्रभुपाद जब ऐसा बोल रहे थे बार बार नारायण, तो प्रभुपाद एकदम से स्तब्ध हो गए, बोलते बोलते प्रभुपाद स्वयं स्तब्ध हो गए, यानी कि एकदम से क्या कहते हैं उसको, अचेत जैसे अवस्था में हो जाता है ना, एकदम से स्टंड हो गए प्रभुपाद, स्टंड हो गए एकदम से, और प्रभुपाद पूरे इंटरनल कॉन्शियसनेस में चले गए, और प्रभुपाद काफी देर तक चुप रहे, बोल नहीं पाए। तो प्रभुपाद उसके बाद जैसे ही उन्होंने आँख खोला, प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच, प्रभुपाद उठ के चले गए, प्रभुपाद आगे बोल नहीं पाए क्योंकि प्रभुपाद एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ नहीं पा रहे थे कि वो उनको फिर और कथा सुना सके। तो ये होता है देखिए शुद्ध भक्तों के साथ, क्योंकि जो स्तर पर है उनके लिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जैसे ही महान भक्त होते हैं, परमहंस वैष्णव होते हैं, जैसे ही वो नाम का उच्चारण करते हैं उनको तत्काल ही लीला की स्फूर्ति होती है। आसक्ति के स्तर पर कोई पहुंचता है तो फिर नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता है, और चूंकि श्रील प्रभुपाद वैसे ही परमहंस के स्थिति पर थे, नित्य सिद्ध पुरुष हैं, तो स्वाभाविक है जब बार बार और नाम लेंगे भगवान का तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। तो ये घटनाएं हैं जिससे हम शिक्षा ले सकते हैं। हमें देखिए कोई भी घटना को, कोई भी जो ऐसा इंसिडेंट होता है उसका शास्त्र की दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और उसका शास्त्र से हमें अर्थ बताना चाहिए, सिद्धांत बताना चाहिए, तब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। हमारी श्रद्धा क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में एक अध्याय है, डिवोशनल सर्विस एंड एक्सटेसी, भाव भक्ति का अध्याय, श्रील रूप गोस्वामी ने इस अध्याय में बताया है कि जो साधना की अवस्था पार कर चुका है और भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है तो उसके क्या क्या लक्षण है। तो वहां पर बता रहे प्रभुपाद कि श्रील रूप गोस्वामी ने 9 लक्षणों का वर्णन किया है, और इन 9 लक्षणों में श्रील रूप गोस्वामी ने रोने की बात नहीं की, हंसने की बात नहीं की, जमीन पर लौटने की बात नहीं की, बाल खड़े होने की बात नहीं की, हालांकि ये सभी अष्ट सात्विक भाव है, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि वास्तव में अगर कोई भाव भक्ति के स्तर पर है, और आगे चलकर कोई ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि हम भाव भक्ति में रोना धोना शुरू करेंगे, जमीन पर लौटेंगे, और जो बेचारे शास्त्र उसको समझने में कमजोर है, जो साधु संघ का महत्व नहीं समझते हैं, जिनमें शास्त्रों की श्रद्धा नहीं, जिन भक्तों को शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, कोमल श्रद्धा है जिनकी, वो भटक जाएंगे, जैसे अभी कई लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्योंकि उनको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, या तो उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भाव भक्ति के 9 लक्षण दिए। उसे पहला लक्षण दे रहे हैं अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता है जो भाव भक्ति के स्तर होता था, और जैसे ही कथा समाप्त होती है वो शुरू हो जाते हैं, उनकी अपनी कथा शुरू हो जाती है। तो ये सब मापदंड है। श्री गुरु गोस्वामी ने इन शास्त्रों को देखकर हम सब की रक्षा की है। प्रभुपाद ने जब एक किताब का प्रकाशन हुआ, प्रभुपाद ने कहा दिस इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। हमारे गुरु महाराज से प्रश्न किया किसी भक्त ने कि गुरु महाराज आप कहते हैं कि किताब हम पढ़ें, लेकिन हमने तो सुना है जो नेक्ट्रो डिवोशन है ये तो बहुत हाई लेवल सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ सकते हैं। महाराज ने कहा ये इसमें लॉज हैं इस किताब में, और इसमें कानून नए भक्तों के लिए भी है और कानून पुराने भक्तों के लिए भी है, इसलिए इसको पढ़ो। तो इसलिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी व्यक्ति आएगा और हमें गुलझर में डाल के चला जाएगा, और हम लोग जो है सोचेंगे वही सच कह रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन मेंटल स्पेकुलेशन। तो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना हमें, ना ही हमें भावुक होना है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि सिद्धांत को समझने कभी आलस मत दिखाओ। हमारा आलस क्या है, भौतिकता में नहीं है। भौतिकता में तो हम लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़ा परिश्रम हम लोग करते हैं। कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना, कोई जॉब में जा रहा है, लोग 15 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर। लेकिन जो आध्यात्मिक विषय आ जाता है, ग्रंथों को पढ़ने का बात चर्चा होती है, इन सिद्धांतों को समझने की बात आती है, तो हम आलसी हो जाते हैं बहुत। हमें लगता है ये सब क्या आवश्यकता है, सेवा ही तो करनी हमें। आप बताइए सेवा क्या है, बस हमें यही तो लिखा है ना शास्त्रों का मर्म तो है। लेकिन सेवा में आपका जो मन, आपका चित्त तभी लगेगा जब आपके हृदय में संबंध ज्ञान जागृत होगा। बिना संबंध ज्ञान के हम सेवा ज्यादा समय तक नहीं कर पाए। और संबंध ज्ञान हमें गुरु साधु और शास्त्र देते हैं, गुरु साधु और शास्त्र की कृपा से और हरिनाम प्रभु की कृपा से हमारे हृदय में संबंध ज्ञान जागृत होता है। संबंध ज्ञान का मतलब हमें पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, प्रकृति का भगवान से संबंध क्या है, और कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, है कि नहीं। जैसे जब महाप्रभु से पूछा सनातन गोस्वामी ने, महाप्रभु जीव का स्वरूप क्या है, जैसे कई बार लोग पूछते हैं हमारा स्वरूप क्या है, तो महाप्रभु ने बड़ा सरल उत्तर दिया, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेदा प्रकाश, है ना। तो पहले तो हम ये अनुभूति करें कि हम दास हैं। इतना अहंकार हमारे अंदर भरा है, प्रभुत्व की भावना जा नहीं रही है, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो महाप्रभु ने यही बताया कि आप पहले ये समझो कि हमारा स्वरूप है दास, गोपी भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास है। तो इस प्रकार गुरु साधु शास्त्रों के आधार पर समझना पड़ेगा। तो ये भाव भक्ति के 9 लक्षण ऐसे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं भक्ति रसाम सिंधु खोल के, ये 9 लक्षण पढ़ सकते हैं आप। और 9 लक्षणों को पढ़ के जब आप देखेंगे कि हमारे गुरुदेव इन 9 लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। वैष्णो में जब आप लक्षण देखेंगे श्रद्धा बढ़ जाएगी। और आपको अगर नहीं ये दृष्टि है देखने की, आपको लगता है कि हमें संस्था में नहीं है, तो आप किसी अनुभवी वैष्णव का मार्गदर्शन लेके आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी बताइए ये 9 लक्षण हमारे गुरु महाराज में कैसे हैं, तो वो आपको बताएं। तो इसलिए हमें तभी रूप गोस्वामी कह रहे हैं उपदेशामृत में, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदयम इप्सिता संगम लव्या, ऐसे भक्त का संग करो जो गुरु की सेवा में तत्पर है या भगवत सेवा में तत्पर है, और उसकी सेवा करो, उसका संग करो, उससे जिज्ञासा करो कि गुरु की सेवा में कैसे, तब श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा आकाश से नहीं टपकती है, ना कभी टपकेगी, आकाश से कुछ नहीं टपकेगा। इसलिए हमें हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोरी कल्पना से भक्ति नहीं बढ़ेगी आगे। कि आप कल्पना कर लो कि आप सखा हो, सपना देखना रात को आप सखी हो, वो सपना तो देखेगा किसी मूवी का, उसको सखी का थोड़ा आएगा सपना। तो इस प्रकार ये अन्य अपराधों से बचना चाहिए, नाम की महिमा को हमें कम नहीं करना चाहिए। नाम की महिमा का मतलब ये है कि शास्त्रों में जो लिखा है उसको यथारूप स्वीकार करना चाहिए, उसमें अपना डिलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये हो सकता है, इसका अर्थ ऐसे हो सकता है। जब शास्त्रों में लिखा है कि एक बार नाम लेने से इतने पाप कट जाते हैं कि जितने पाप हम कर भी नहीं सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, इस बात को यथारूप स्वीकार करना चाहिए हमें। उसमें कल्पना नहीं करनी चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ना, हमने तो कितनी बार नाम ले लिया। आपने नाम लिया है वास्तव में आज तक, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि अपराध युक्त नाम जो है वास्तव में नाम है ही नहीं, वो तो केवल नामों का अक्षर है। लेकिन गुरु की आज्ञा से आप कर रहे हैं, इसलिए वो नाम अपराध करते हुए भी हमें हमारा कर्मशः विकास होता है, क्योंकि साधन भी यही है और साध्य भी यही है, तो हरि नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा अपराध भी कर रहे हैं तो, ये इसका फल है। तो अपराध होते हुए भी हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। गाड़ी आपकी खराब हो गई, आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं, तो इसका मतलब थोड़ा कि आप गाड़ी छोड़ दोगे पूरी तरह, उसको गाड़ी को ठीक कराओगे ना, फिर से चलाओगे उसको, गाड़ी खराब हो गई, मैं जा रहा हूँ बस में, इसको ये रहने दो, आप गाड़ी ठीक कराओगे मैकेनिक से, उसी गाड़ी में फिर जाओगे आगे। तो इसी तरह से नाम लेते हुए अगर अपराध होते हैं तो हमें फिर भी नाम लेते रहना चाहिए। निरंतर नाम लेते रहते लेते 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 क्या होगा, यही हरिनाम प्रभु की कृपा से नाम अपराध कटेंगे और फिर हमें शुद्ध नाम का आभास होगा। शुद्ध नाम के आभास में क्या होता है, अभी नाम आभास का अध्याय आएगा तो उसमें हम बताएंगे। तो नाम आभास की स्थिति में क्या होता है, हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं, नाम आभास की स्थिति में प्रारब्ध कट जाते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए और इस तरह से फिर हमारी नाम में रुचि जागृत हो जाती है। और आगे बताया है, छठा है अर्थवाद का आरोप, छठा नाम अपराध है अर्थवाद का आरोप, क्योंकि यहां इंग्लिश में दिया तो हिंदी में अर्थवाद का आरोप, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो शास्त्रों में दिया गया है, जो हमारे वैष्णव आचार्य लोग बता रहे हैं, जो अर्थ वो बता रहे हैं उसी अर्थ को प्रस्तुत करना है, अपना अर्थ नहीं प्रस्तुत करना है हरि नाम के बारे में, है कि नहीं, अपने नए नए अर्थ नहीं निकालने में। तो इस बात का बड़ी ध्यान रखना हमें और हरि नाम का निरंतर गुणगान करना चाहिए। सातवां नाम अपराध बताया गया, नाम के बल पर पाप करना। तो हमने पहले भी बताया था पापों से बचने का तरीका कई प्रकार का है। एक तो हमें कभी भी जो पाप करने की इच्छाएं हैं उसको कभी संतुष्ट नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। मान लीजिए आपके मन में विचार आता है कि ये पाप कर लूं, तो जितनी बार वो विचार आता है उतनी बार अगर आप काटते हैं उसको तो उससे क्या होगा, आपका बल बढ़ जाएगा और इतना बल बढ़ जाएगा कि फिर वो बीच से उखड़ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम गुरु के आदेशानुसार भगवत भक्ति में लगेंगे, भगवत सेवा में लगेंगे और अपनी साधना को अच्छी तरह से बनाए रखेंगे। जो साधन भक्ति के नियम हमारे आचार्यों ने दिए हैं उसके अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर उत्साह निश्चय धैर्य ये लक्षण जागृत होंगे और इन लक्षणों से हम इन पापों से बच सकते हैं। हर भक्त को चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, उनको बड़ी गंभीरता से चार नियमों का पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद ने एक जगह बताया कि सबसे भयानक जो नाम अपराध है और वो ये है, नाम के बल पर पाप करना। जैसे हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पीछे, नाम के बल पर पाप करना, तो इसलिए इससे हमें सदैव बचना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा कि फिर इससे संस्कार, दूषित संस्कार जागृत होते हैं। हम भक्ति ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे संस्कार कुछ ऐसे संस्कार हैं, दूषित संस्कार हैं, उन कारणों से हमारी भक्ति जो है वो दृढ़तापूर्वक नहीं हो पा रही। ब्रह्म व्यवहारत पुराण में अभी किसी ने पीछे SMS किया था, मैं ब्रह्म व्यवहारत पुराण का एक श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने आपके पाप कटे हैं उतने ही आपकी श्रद्धा होगी प्रमाणिक गुरु में और शास्त्रों में, जितने ज़्यादा पाप हैं उतनी कम श्रद्धा होगी गुरु में और शास्त्रों में। और ये भगवान गीता में बता रहे हैं, ये शाम तो अंतकतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मना सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो इस प्रकार नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से क्या होता है, फिर हरिनाम प्रभु की कृपा समाप्त हो जाती है। आठवां जो है होता है यहाँ पर शुभ सकाम कर्म कांड के समान समना, जो नाम अपराध है इससे हमें बचना चाहिए और हमें कर्म कांड के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। भक्ति मार्ग में जो बढ़ने के लिए सहायक है उस विधि विधान को हमें अपनाना है। अस्वर कर्म कांडी ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहकर श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो भी हमें वैष्णव संस्कार पद्धति के अनुसार करना चाहिए, जो कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने षटक्रिया सार दीपिका में या उन्होंने जो अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है और संस्कारों के बारे में बताया है कैसे हमें संस्कार करने चाहिए, क्रियाकर्म कैसे संस्कार करना चाहिए, है ना, और उपनयन संस्कार कैसे करना चाहिए। तो इस संस्कारों के बारे में बताया है वैष्णव पद्धति के अनुसार, क्योंकि इन वैष्णव पद्धति के अनुसार करने का लाभ ये होता है कि कि जब वैष्णव पद्धति के अनुसार हम संस्कार करेंगे तो हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे, हमारी भक्ति कर्म मिश्रित नहीं होगी। लेकिन कर्म कांडियों से हम कराएंगे तो हमारी भक्ति जो है कर्म मिश्रित हो जाएगी और फिर हम कनिष्ठ अवस्था से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। कर्म कांडी ब्राह्मण जो है वो आपको कहाँ ले जा सकते हैं, अधिक से अधिक स्वर्ग लोग। और आज के समय में तो कर्म कांडी ब्राह्मण भी नहीं है, वो सब चोर के चोर है, एक से बढ़कर एक धंधा बना के रखा हुआ सब। उनसे पूछो कि क्या बोल रहे हैं आप, वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि डर है अगर हम उनको बता देंगे तो फिर हमारे धंधे का क्या होगा। तो इन्हीं कारणों से समाज में जो है लोगों की श्रद्धा टूट गई, इन कर्मकांडी और ब्राह्मण के कारण लोगों की श्रद्धा टूट गई शास्त्रों में, लोगों की श्रद्धा टूट गई साधु संतों में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने ही बच्चों को सिखाते थे यज्ञ के बारे में, श्राद्ध के बारे में। तो उससे क्या होता था, और जो शूद्र जाति के थे उनको दूर रखते थे और जन्म के आधार पर ये लोग बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं। तो इससे क्या समाज में एक बिल्कुल भ्रम फैल गया और लोग ये सोचने लगे कि ये क्या बकवास है। तो लोगों की श्रद्धा टूट गई शास्त्रों में और लोग विदेश की नकल करने लगे, क्योंकि विदेशों में ये चर्चा होती नहीं कि कौन नीचा है कौन ऊंचा है ना। तो इस प्रकार, लेकिन जब श्रील प्रभुपाल ने या उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने जब बहुत ही खुलेआम प्रचार किया नवद्वीप में, ब्रज में, उन्होंने कई शूद्रों को भी उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दे दी। कितना भारी खंडन किया उन्होंने, भरे आम खुले खुले उन्होंने खंडन किया कौन असली ब्राह्मण है कौन वैष्णव है ना। उनको सभा में बुलाया गया, भक्तिनाथ ठाकुर ने भेजा उनको और कई सारे बड़े बड़े संत आए थे। चर्चा का विषय था ब्राह्मण और वैष्णव। 3 दिन तक ये चली कथाएं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 3 दिन कथा की और उस पर किताब का प्रकाशन भी किया बाद में उन्होंने, ब्राह्मण और वैष्णव। पहले तो उन्होंने ब्राह्मण का ही गुणगान किया शास्त्रों के आधार पर, बहुत गुणगान किया। और जब वो वैष्णव का गुणगान करने लगे तो बताने लगे जो वैष्णव होते हैं वो पहले से ब्राह्मण होते हैं लेकिन जो ब्राह्मण है वो आवश्यक नहीं है कि वो वैष्णव हो, क्योंकि ब्राह्मण कर्मकांडी भी होते हैं तो इस तरह से उन्होंने वैष्णव के जो है स्थिति की स्थापना की कि वैष्णव जो सबसे उच्च कोटि के होते हैं और पूरे स्वभाव में उनका उनको विजय प्राप्त हुई। लेकिन कई ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण थे जो उनसे द्वेष करते थे और उन लोगों ने योजना बनाई थी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को मारने की। नवदी मंडल परिक्रमा के समय में कई उन लोगों ने उनके ऊपर ईंट फेंके, पत्थर फेंके, बोतल फेंके, फिर उनके शिष्य ने उनको बचा के कलकत्ता भेजा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज डरते नहीं थे, वो खुलेआम सब कुछ बता देते थे सबके बारे सबकी पोल खोल देते थे। तो ये बहुत खतरनाक और बहुत भयानक अवस्था थी हमारे देश की। जब श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर प्रचार कर रहे थे उस समय अछूत का प्रचार चल रहा था, शूद्र है ये, ब्राह्मण है ये, मंदिर में नहीं आ सकते हैं शूद्र लोग। कई प्रकार की भ्रांतियां थी समाज में, कई प्रकार के अपसंप्रदाय थे, महाप्रभु के अनुयायी हैं हम, है ना। तो उन सबका भी पोल खोला, आउल बाउल सखी बेखी चूड़ा देरी दारावेश नेड़ा साहिजिया, है ना, ऐसे 13 प्रकार के अपसंप्रदायों का पता लगाया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। ओडिशा और बंगाल में बिल्कुल खोल दिया, पोल खोल दिया, और बहुत खोर परिश्रम करके इन्होंने फिर प्रमाणिक शास्त्रों का प्रकाशन किया और उन्होंने महापुर के आंदोलन की स्थापना की, पुनः स्थापना की। तो इन आचार्यों का योगदान है, अगर ये लोग योगदान नहीं देते तो हम लोग जो सोचते कि जो ये हो रहा है वही सही है और हम भी कहीं सखी बहकी बनकर जो है घूम रहे होते सखी बनकर या फिर कर्मकांडी बनकर कहीं पे यज्ञ वगैरह कर रहे होते, पैसा कमा रहे होते, सोचते यही है असली धर्म, सड़क पे बैठ के कि यहाँ बैठे रहते हैं, कहीं सड़क की जन्मपत्र देखते रहते हैं वो और टका निकालते हैं सबसे। तो हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम जो है वो केवल केवल शुभ सकाम कर्म नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र आपको गोलोक वृंदावन ले जाता है सीधे। ये गोलोक वृंदावन कैसे ले जा सकता है आपको हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि गोलोक से आया है। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, तो महाप्रभु ने इस प्रेम धन का वितरण किया है। तो जो भी हरि नाम लेगा हरि नाम संकीर्तन से ही वो धाम जा सकता है, केवल हरि नाम संकीर्तन से। इसलिए श्रील जी गोस्वामी ने लिखा है कि कलयुग में महाभागवत की स्थिति में पहुंचना लगभग असंभव है भक्ति संदर्भ में लिखा है जी गोस्वामी ने, बोलते हैं लेकिन एक ही तरीका है महाभागत बनने का, और वो कहते हैं वो तरीका क्या है, हरिनाम संकीर्तन। और एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि एक शिष्य ने कि प्रभुपाद जो योग पीठ में जो शिवास आंगन में जो हरिनाम संकीर्तन होता है जो हुआ और जो रासलीला है उसमें कोई अंतर नहीं है ना, तो प्रभुपाद ने कहा अब तुम असली अर्थ समझे हो हरिनाम संकीर्तन का, कि हरिनाम संकीर्तन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। तो जो हमारे भक्त जो हरिनाम संकीर्तन में जाते हैं और बृहत मृदंग में भाग लेते हैं वो तो सब रासलीला में भाग ही ले रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा अंदर इसलिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक है क्योंकि हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों के और षट गोस्वामियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हरिनाम को कभी भी साधारण मंत्र नहीं समझना चाहिए कर्मकांड का। और नौवा बताया जैसे कि अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, ये नाम अपराध है। नए नए लोगों को बता देना आप नाम जब जब करोगे आप कल्पना करो कि आपका ये स्वरूप है, ये बता रहे हैं, ये नौवा नाम अपराध। उसकी श्रद्धा नहीं है और आप उसको वो बातें बता रहे हो जो उसको पचा नहीं सकता है वो। जैसे कि एक बच्चे को आप सिखा रहे हो कैलकुलस, उसने अभी 2+2=4 उसको पता नहीं कैसे होता है, उसको आप एलजेब्रा सिखा रहे हो, पागल हो जाएगा कि नहीं, बोले ये क्या हो रहा है, बोले अगर 2 - 3 करके दिखाओ आप, बोले 2 - 3 ये तो गलत है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, बच्चा थोड़ा बता सकता है, नहीं बता सकता है। और फिर अगर कैलकुलस की बात आ गई तो वो इतनी समझ पाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जिसकी स्थिति है उसके आधार पर ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। प्रभुपाद किंग ऑफ नॉलेज में लिख रहे हैं एक जगह पर, अगर शिक्षक टीचर बच्चे को ABCD सिखा रहा है, हाथ पकड़ा के लिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि खुद भी वो ABCD जानता है। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं या आप 8th-10th स्टैंडर्ड पे हैं और एक छोटे बच्चे को आप ABCD सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप ही नर्सरी में है ना। और एक उदाहरण बड़ा अच्छा है, एक डायबिटिक पेशेंट को आप रसगुल्ला खिलाओ उसको मीठा लगेगा या कड़वा लगेगा, बताओ, मीठा लगेगा ना, लेकिन वो मीठा उसके लिए अमृत है या जहर, बस यही बात है यहाँ पे नौवा नाम अपराध। अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करने का मतलब ये है, जिस तरह से एक डायबिटिक पेशेंट को आप रसगुल्ला खिला रहे हो उसका बीमारी उसकी बढ़ेगी कम नहीं होगी। इसलिए भक्ति ठाकुर ने जय धर्म में लिखा है कि कौन अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा बता सकता है, एक ही एक व्यक्ति बता सकता है, कनिष्ठ नहीं बता सकता उसको नाम अपराध लग जाएगा, मध्यम अधिकारी नहीं बता सकता उसको भी नाम अपराध लग जाएगा, क्योंकि मध्यम अधिकारी को भी भेद करना पड़ता है कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, कौन द्वेष कर रहा है भगवान से और कौन वास्तव में निर्दोष है और कौन भक्त है, ये उसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा तभी वो प्रचार कर सकता है। तो ये अधिकार केवल उत्तम कोटि वैष्णवों को है। वो बोलते हैं कैसे है ये भी बताओ, ठाकुर भक्ति लोग कहते हैं कि अश्रद्धालु में महाभागवत जो होते हैं वो श्रद्धा जागृत करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, उनमें शक्ति होती है कि अश्रद्धालु में भी श्रद्धा जागृत कर देंगे वो, और अश्रद्धालु में श्रद्धा जागृत करके उनको नाम की महिमा फिर बताते हैं कि श्रद्धा जागृत हो जाती है उनकी तो फिर वो नाम की महिमा सुन लेते हैं। तो ये शक्ति थी श्रील प्रभुपाद, लेकिन उत्तम कोटि के वैष्णव में शक्ति होती है। तो हम लोग उत्तम कोटि के वैष्णव के पद चिन्हों पर चलना है, उनकी नकल नहीं करनी है। महाजनो ये न गथा स पंथा, पंथा का मतलब होता है रास्ता, फुटस्टेप्स, वन मस्ट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ महाजन्स, पर कहीं नहीं लिखा है कि वन मस्ट इमिटेट द महाजन्स, है कि नहीं। खुद को हम उत्तम वैष्णव सोचने लगे और हम भी सबको जी नाम की महिमा बताएंगे, आ जाओ आपको भी बताता हूं मैं तत्व तो क्या है, सारा बता देता हूं, रस सारा बता देता हूं, उसमें श्रद्धा नहीं है, वो उल्टा अपराध करेगा। और अगर अपराध क्या करेगा, वो खुद सोचने लगेगा कि मैं स्तर में पहुंच चुका हूं, और फिर वो क्या करेगा, सब भक्तों को देखेगा और सोचेगा ये सारे तो कनिष्ठ है, इनको तो कुछ आता ही नहीं अब, क्योंकि मुझे सब कुछ आ गया है, मैं नाम की महिमा जानता हूं। और इस कारण से क्या करेगा, वो सारे भक्तों में दोष देखेगा, और सभी भक्तों में दोष देखते देखते उसको इतना बल मिल जाएगा कि वो अंत में गुरु के अंदर भी दोष देखने लग जाए। जैसे कौन उदाहरण है, गौरलीला में कौन उदाहरण है, रामचंद्रपुरी, वो सभी सन्यासियों में दोष देखते थे, आखिर में उन्होंने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को भी नहीं छोड़ा। गुरुदेव आप रो रहे हैं, आपको तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जो वास्तव में भ्रमभूत स्थिति में है वो भावुक कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद ने लिखा, ट्रांसलेट किया, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल, प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया चेतन चरतामृत से, दुष्ट निकल जाओ यहां से, अगर तुम्हें देखकर मैंने कहीं शरीर छोड़ दिया तो मुझे सदगति प्राप्त नहीं होगी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने रामचंद्रपुरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन श्रीपाद ईश्वरपुरी जिन्होंने आखिरी समय तक श्रीपाल माधवेंद्रपुरी की नम्रता पूर्वक सेवा की, उनका मलमूत्र साफ किया, श्रीपाल माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे माध्यम से पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, और कौन के शिष्य बने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, जो शिष्य अपने गुरु की सेवा तत्परता से करता है तो ऐसे शिष्य की सेवा स्वयं चैतन्य महापुर करने के लिए आते हैं। अमृतवाणी जो पुस्तक है ना, उसमें है ये प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया। तो सारा जो है खेल तो श्रद्धा का है गुरु साधु और शास्त्रों में। इसलिए प्राकृत रस सत दूषणी जो श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने लिखा 1916 में, उसमें लिखा है साफ साफ कि कभी भी दिव्य रसों का वर्णन, जो रूपानुग है प्रमाणिक रूपानुग वैष्णव होंगे वो कभी भी दिव्य रसों का वर्णन कनिष्ठ भक्तों के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें वो श्रद्धा नहीं है, और उनको आप सुनाओगे तो खुद को डॉक्टर समझने लगेंगे। बस सिंपल सा उदाहरण है, हमारे कई भक्त हैं जो केमिस्ट हैं, दवाइयों की जानकारी रखते हैं, लेकिन वो खुद अपने को डॉक्टर सोचने लगे तो ये सही होगा बताइए? केमिस्ट जो है आपको दवाई दे सकता है, लेकिन केमिस्ट की आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जब केमिस्ट दवाई प्रिस्क्राइब करेगा तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इसी तरह से जो कनिष्ठ भक्त है वो हालांकि जानकारी तो प्राप्त कर लिया उसने सुन के कहीं से भी पढ़ के, लेकिन वो अपने आप को अगर डॉक्टर सोचने लगेगा, खुद को उत्तम वैसा सोचने लगेगा, तो फंस गया कि नहीं फंस गया वो, ये समस्या है। तो इसलिए कभी भी अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने एक शिष्य को देख के बोला, जब उस शिष्य के थैली में बहुत सारी किताबें थी और प्रभुपाद की सहायता करते थे अनुवाद करने में, मतलब एडिटिंग में, संस्कृत के प्रभुपाद संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करते थे तो वो एडिटिंग करवाते थे प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे होते थे तो प्रभुपाद कहते थे कि इसको चेक भी कर लो तो साथ साथ। तो बहुत सारी किताबें थी उनके पास, प्रभुपाद ने कहा ये सब इतनी सारी किताबें क्या है तुम्हारे पास? अगर प्रभुपाद ये इन आचार्यों की टीका है, ये इनकी टीका है, ये इनकी टीका है, ये इनकी टीका है, ये ग्रंथ है, वो ग्रंथ है। तो प्रभुपाद ने उनको देख के बोला, यू विल बी इन माया। बोलते प्रभुपाद ये तो सब आचार्यों की टीका है, मैं समझा नहीं कि मैं कैसे माया में गिरूंगा। प्रभुपाद कहते हैं यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अ सुपीरियर वैष्णव, यू विल थिंक दैट यू नो मोर देन योर गुरु। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो आंदोलन छोड़ के चले गए। वास्तव में ऐसा हुआ, लेकिन प्रभुपाद की विशेष कृपा है वो भक्त फिर से वापस आ गए आंदोलन। प्रभुपाद क्योंकि प्रमाणिक वैष्णव हैं, करुणा उनके हृदय में, वो नहीं चाहेंगे कि उनके शिष्य माया में जाए। तो कई ऐसे शिष्य हैं जो माया में गए थे वो धीरे धीरे वापस प्रभुपाद के शरण में बुलौट के आ रहे हैं, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं कि हमने गलत रास्ता अपना लिया था। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये नाम अपराध ना कर बैठे हम लोग कि नए नए लोगों को हम बताना शुरू कर दें, नाम की महिमा सारी बताना शुरू कर दें और खुद शास्त्रों की बातें बताना शुरू कर दें नए लोगों को, तो खुद को भी समस्या में डालेंगे हम। तो दूसरों को डाल ही रहे हैं समस्या में, खुद को भी डाल रहे हैं। ये नौवां नाम अपराध। और दसवां यहाँ पर बताया कि पूरी शरणागति के साथ हमें श्रद्धापूर्वक नाम का उच्चारण करना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हरि नाम में, और पूरा प्रयास करना चाहिए हमें कि जो भौतिक आसक्ति है उसका परित्याग करना चाहिए हमें, और जो भी हमें साधन मिलते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। युक्त वैराग्य का सिद्धांत हमें अपनाकर गुरु के मार्गदर्शन में हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में युक्त वैराग्य वो वास्तव में मध्यम अधिकारियों का है। कनिष्ठ भक्त युक्त वैराग्य के सिद्धांत को नहीं समझ पाए, उसका दुरुपयोग भी कर सकता है साधन का। वो जैसे एक कनिष्ठ भक्त को मान लो एक उसको दे दिया जाए मोबाइल जिसमें MP3 की भी फैसिलिटी है ना, तो आप तो सोचेंगे कि वो कुछ सुन रहा है, कीर्तन या भजन सुन रहा है, लेकिन जब आप उसका ईयरफोन थोड़ा सा पास लगा के देखेंगे तो उसमें हो सकता है फिल्म सॉन्ग चल रहे हो, है कि नहीं। तो वो तो कहेगा मैं युक्त वैराग्य में हूँ कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, लेकिन वो तो कुछ और ही हो रहा है उसके साथ। तो ये एक होता है जब हम लोग कनिष्ठ भक्त जो है अगर वो मार्गदर्शन में नहीं लग रहेंगे तो फिर वो इस प्रकार फंस जाएंगे माया में। इसलिए गुरु जितना हमें कहते हैं उतना ही हमें सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम खुद उस सुविधा में फंस जाएंगे। हम समझ रहे हैं इस बात को, तो इन बातों का अच्छी तरह समझना है। और अगर कोई वास्तव में नाम अपराध नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण है, नाम अपराध जो नहीं कर रहा है उसके लक्षण ही है कि उसके अंदर स्वाभाविक नम्रता जागृत होती है, दूसरा उसके हृदय में करुणा होती है, तीसरा उसमें मिथ्या अहंकार नहीं होता, चौथा वो हर जीव के प्रति हर भक्त के प्रति आदर की भावना रखता है। ये सब लक्षण है उस भक्त के जो अपराध रहे थे। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, दूध में नहीं। क्योंकि अधिकांश जो भक्त जो भ्रमित हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं भक्ति में, और जब ये लक्षण देखेंगे उनमें कोई ये लक्षण नजर नहीं आएंगे। इंसान की पहचान लक्षणों से होती है, चरित्र से होती है, उसके व्यवहार से होती है कि नहीं, सद्गुणों से होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को बताया कि वैष्णवों के 26 गुण क्या हैं। क्यों बताया महापुरुष ने 26 गुण वैष्णवों के, बताइए क्यों बताया महापुरुष सनातन गोस्वामी को 26 वैष्णवों के गुण, कि हमारे गुण अंदर वो गुण हैं या नहीं, कहीं हम भ्रमित ना हो जाएं कि हम वैष्णव हैं, है कि नहीं। क्योंकि कनिष्ठ भक्त का मतलब भक्ति ठाकुर कहते हैं वो वैष्णव नहीं होते, वो वैष्णव जैसे दिखते हैं वैष्णव प्राय भी कहते हैं कनिष्ठ भक्त को। तो वैष्णव जैसे दिखना और वैष्णव होना दोनों में अंतर है। ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो सकता है लेकिन वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये लक्षण है। तो इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर ने भी बताया कि एक भक्त जो अपराध नहीं करता है वो क्या किस तरह की प्रार्थना करता है, बोलते हैं मेरे प्रिय मित्र मेरे सहयोगी जितने भी पद जीवात्मा है कितने दुर्भाग्यशाली हैं, वो कैसे भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, वो कब तक अभद अवस्था में रहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं है ना, इन धूर्तों और मूर्खों का क्या होगा जो माया सुख को ही असली सुख समझ बैठे हैं, मुझे अपनी चिंता नहीं है मुझे तो इन लोगों की चिंता है, ये क्या होगा है ना, इनकी आसक्ति धन के प्रति है ना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के प्रति, तो ये लोग कैसे बचेंगे भव सागर से। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब अनर्थों से भरे हुए हैं और इंद्र तृप्ति में इनका बहुत मन लगा हुआ है ना। नूनम प्रमत्ते कुरुता विकर्मा यत इंद्र प्रीति आपनोती, भागवत में लिखा हुआ है कि क्या कोई व्यक्ति जब प्रमत्त हो जाता है पागल हो जाता है तो वो क्या करता है, विकर्म करता है। माया के प्रभाव में जब कोई आता है व्यक्ति तो वो प्रमत्त हो जाता है और हर कार्य वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वो इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इस प्रकार अपना समय लोग बर्बाद करते हैं कर्म में ज्ञान में, तो इन लोगों का साक्षात्कार कैसे जागृत होगा, इनके हृदय में कब भगवत प्रेम जागृत होगा? तो ये भक्तों ठाकुर ने शिक्षाष्टकम की टीका में लिखा है, इस प्रकार की प्रार्थना बताई है कि वो भक्त करता है जिसका मन अपराध रहित हो चुका है। तो इस प्रकार हम जाने का प्रयास करें। आज के लिए हम यही विराम देते हैं, कोई एक आध प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इनका प्रश्न ये है कि हम अपने आप को नियंता सोच रहे हैं, हम सोचते हैं हम भोगता है, हमारे अंदर अहंकार है, हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान सोचते हैं, हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, तो इन सब बातों से कैसे बचे? इन बातों से बचने का सबसे सरल तरीका ये है वैष्णव सेवा। मिथ्याहंकार समाप्त तभी होगा जब वैष्णव की शरण में जाएंगे। और कोई साधन नहीं है, ना तपस्या से, ना आग में के बीच खड़े होने से, या ठंड के मौसम में पानी के अंदर जाने से, है ना। आप 36,000 साल खड़े भी हो जाओ एड़ी के बल पर, जैसे हिरण्यकश्यप खड़े हुए, कोई भी साधन से मिथ्याहंकार नष्ट नहीं हो सकता है। मिथ्याहंकार नष्ट होने का केवल एक ही तरीका है, और वो वैष्णव की शरण लेना। और जैसे परम वैष्णव शिवजी महादेव हैं, गोपेश्वर महादेव जो प्रिजाइडिंग डिटी हैं फॉल्स ईगो के, उनसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो हमारी सहायता करेंगे, वो सभी भक्तों की सहायता करते हैं, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो सबसे सूक्ष्म जो क्या कहते परत है, लेयर है, वो मिथ्याहंकार, तो उसको पार करके जाना पड़ेगा। तो वैष्णव के पास वो शक्ति होती है, गुरु के पास वो शक्ति होती है जो हमें मिथ्याहंकार से बचाते हैं और हमें संबंध ज्ञान देते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, और इसके लिए कोई तरीका नहीं है। शास्त्रों के पढ़ के हो सकता है कि हमें फिर से अहंकार आ जाए कि हम बहुत जानते हैं, है कि नहीं। गुरु कहते हैं आप रोज 2 घंटा पढ़ो, तो गुरु ने 2 घंटा पढ़ा है, मेरे पास तो काफ़ी समय है, मैं 4 घंटा पढ़ूंगा। तो जो 2 घंटा पढ़ा हमने वो तो हो गई भक्ति, और जो एक्स्ट्रा 2 घंटा पढ़ लिए उसको कहते हैं ज्ञान। और उस ज्ञान का खतरा क्या होगा, हम सोचेंगे कि हमें ज़्यादा पता है गुरु से। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पढ़े वो भक्ति में काउंट किया जाए, तो हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना हमें गुरु कहते हैं। हम यहाँ इस आंदोलन में ज्ञानी बनने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं हम शास्त्रों का अध्ययन ना करें। हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं इसलिए ताकि हम भगवत भक्ति में लग सकें, गुरु की सेवा में लग सकें, और संदेश को लोगों तक पहुँचा सकें, इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। ये शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ ये नहीं कि हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, यानी कि मेंटल स्पेकुलेशन। तो इस तरह से हमें तो शास्त्रों को पढ़ने में एक खतरा आ जाता है, लेकिन जो गुरु और वैष्णव के पास जाएंगे तो हमारा जो फॉल्स ईगो है उसको बिल्कुल पाउडर बना देंगे, वो उसको चकनाचूर कर देंगे बिल्कुल, है ना। तो इसलिए हमें वैष्णव के पास जाके, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए, और उनके संसर्ग में रहने से अपने आप हम देखेंगे कि हम लोग अहंकार रहित हो जाए, हम पवित्र होने लगेंगे। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि नाम की महिमा बताना नहीं चाहिए, हमने बताया नाम के जो गूढ़ अर्थ हैं वो एक अश्रद्धालु व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो अपराध करेगा। आप समझ लीजिए कि आप एक व्यक्ति को बुक देते हैं जिसमें रासलीला का वर्णन किया गया है, उसमें श्रद्धा नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपराध करेगा, बोलेगा भैया कृष्ण ने रासलीला की, हम क्यों नहीं कर सकते, हंसेगा वो, है कि नहीं, वो आपके ऊपर हंसेगा, तो वो तो अपराध कर रहा है आपके लिए, तो ये भगवान ही सहन करेंगे, और आपने उसको सुना दिया, अब वो अपराध कर रहा है, तो इससे नाम अपराध लगता है ना। फिर अश्रद्धालु को नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए, उच्चारण जरूर कराए सबसे, वो तो हम भी करते हैं, संकीर्तन तो हम भी करते हैं, है कि नहीं। और भगवद्गीता तो आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभिक ज्ञान है, ABCD है स्पिरिचुअल लाइफ का भगवद्गीता, और ABCD सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ABCD नहीं अल्फाबेट सीखे नहीं, तो फिर आप सेंटेंसेस कैसे पढ़ेंगे आप, है कि नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है भगवद्गीता का ज्ञान, तो भगवद्गीता को पढ़ना आवश्यक है। तो जो पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जब उनको समझाएंगे, क्योंकि समझाने वाले कौन है, प्रभुपाद ही समझा रहे हैं ना, तो प्रभुपाद क्योंकि समझाएंगे तो फिर उनके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाएगी। हम समझाएंगे तो फिर वो हो सकता है कि माने या ना माने, लेकिन प्रभुपाद की किताब दे देंगे तो आज नहीं तो कल वो किताब उठाएगा तो उसमें श्रद्धा जागृत हो जाएगी। ऐसे हमने कई केसेस देखे है कि नहीं, क्योंकि हमारे संस्था में ये रिकॉर्ड है पूरे विश्व भर में कि सबसे ज़्यादा भक्त बने हैं वो प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ के पढ़े। हालांकि कई और ग्रंथ जो हैं प्रभुपाद जी लिखे हुए उसको भी पढ़ के बने हैं, लेकिन गीता पढ़कर सबसे ज़्यादा बने। हाँ जी, गुरु से ज़्यादा जानते हैं ऐसे भक्त कहते हैं कुछ लोग, तो वो तो एक अपराध कर रहे हैं, और ऐसे भक्तों को सुनना भी अपराध है। बचने का मतलब ये है कि उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे कोसों मील दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। जो ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं वो भक्ति में है ही नहीं, भक्ति देवी उनके हृदय को छोड़कर चले गई हैं, वो केवल कोरी कल्पना कर रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, बस सपना देख रहे हैं और दिन में तारे देख रहे हैं, बस दिन में तारे नजर नहीं आते। तो इसलिए वो सपना देखने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे जो वैष्णव अपराधी हैं, गुरु अपराधी हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, ना उनसे सुनना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि ना आपके अंदर बोलने की शक्ति नहीं है, आपको डर लगता है कि आप मना करने में डर लगता है, तो आप चुपचाप उस स्थान छोड़कर चले जाएं, कोई भी बहाना बना कर, लेकिन संग ना करें। अगर आप सुनने बैठ गए तो फिर आपका मन भी दूषित हो जाएगा। ऐसे लोगों का संग करके हमारी भी श्रद्धा टूटेगी, हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। ये लोग जहर की तरह है, सांप की तरह है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथा मृतम, श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, श्रवण नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यथा पया। यानी कि जो कई अवैष्णव हैं हरि कथा भी सुना रहे हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सांप दूध पीता है, वो देखने में दूध है लेकिन है जहर। तो ये लोग जहर डाल रहे हैं कृष्ण कथा सुनाकर, कृष्ण कथा सुना रहे हैं लेकिन साथ में ये जहर दे रहे हैं, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गुरु से ज्यादा जानते हैं। और उनके जो सुनने वाले जो लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं, वो जहर को आगे फैला रहे हैं, है कि नहीं। तो पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन है, तो ये भी इस तरह का पोल्यूशन है वैष्णव समाज में। इनका प्रश्न ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि आप भी शुद्ध हो, आप भी सन्यासी हो, वो तो भगवद गीता में मिल जाएगा उत्तर आपको। भगवान ने स्वयं बताया गीता में कौन सन्यासी है, छठे अध्याय का पहला श्लोक उठा के देखिए आप, है कि नहीं। जैसे श्रद्धा कम होने की वजह से ऐसा होता है, क्या डिप्रेशन होता है उसका उदाहरण दीजिए कुछ। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि किस भक्त का संग करना चाहिए। हमने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि किस भक्त का संग करना चाहिए। तीन प्रकार के भक्त बताए हैं श्री रूप गोस्वामी ने। उन्होंने सबसे पहले बताया कृष्णे इति यस गिरितम मनसाद्रियेत, जो कृष्ण का नाम ले रहा है उसका आदर करो मन से। फिर वो बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं दीक्षास्ति चेत प्रणत भीष भजन तम ईशम, जिन्होंने आध्यात्मिक दिशा ग्रहण कर ली है, अर्चे वगैरह की सेवा में लगे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करो। लेकिन संग किसको करने के लिए कहा है, संग किसका करने के लिए कहा है, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदय इप्सिता संगम लब्ध्या, जो भगवत सेवा में तत्पर है, लगातार भगवान की सेवा में लगा हुआ है या गुरु की सेवा में लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है अन्यों की निंदा से रहित है, ऐसे भक्तों की सेवा करो, ऐसे भक्तों का संग करो। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी नहीं कह रहे सबका संग करो, क्योंकि वैष्णव समाज में हर लेवल के डिवोटीज आते हैं, और हर लेवल के डिवोटीज आप संग करोगे तो डेंजर है। इसलिए हमें सबसे पहला लक्षण ये देखना है कि ये भक्त निंदा तो नहीं कर रहा, ये कहीं प्रजल्पा तो नहीं कर रहा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने बता दिया कि 6 ऐसे विरोधी कार्य हैं जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है, अत्याहार अप्रयाश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जन संघर्ष लौल्यम षड्वीर भक्तिर विनश्यति। ये 6 लक्षण, भक्ति नष्ट हो जाती है अगर ये 6 हम लोग बातें करेंगे, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि यही लक्षण हमें वैष्णव अपराध कराते हैं, ये हमें वैष्णव अपराध की तरफ ले जाते हैं। तो ये जो 6 जो बताए हैं विरोधी कार्य बताए हैं श्री रूप गोस्वामी ने, उनसे बचना होगा हमें, और साथ में गंभीर भक्तों का संग भी करना पड़ेगा, दोनों चीजों का ध्यान रखना है, तो फिर हमें कोई हानि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि अगर अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो उसमें चिंता ना करें। उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतोवृत्ते षडभीर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह बनाए रखें, एंथुजियाज्म, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, और उन कार्यों को स्वीकार करें जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। और संग त्यागा, असत्संग का त्याग करें, है ना, और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करें गुरु के माध्यम से, तो फिर हमारे भक्ति जो है आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। तो ये सब उपदेशामृत ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया श्रील रूप गोस्वामी ने कि कोई संशय नहीं आना चाहिए। शास्त्रों का अच्छी तरह पढ़ें, शास्त्रों का अच्छी तरह समझें, भक्तों के संग में रहकर। इसलिए महाप्रभु ने कहा, स्वरूप दामोदर ने कहा उस बंगाली कवि को, क्या बोला कि भागवत अगर समझना है तो भागवत व्यक्ति के बाद जाके समझो, जो गौरंग महाप्रभु के भक्त हैं उनसे श्रीमद् भागवत समझो, खुद भागवतम पढ़ोगे तो शायद आप मेंटल स्पेकुलेशन करोगे। तो इसलिए हम लोग को भक्तों के सताम प्रसंगा मम वीर संवितो भवंती हृदय कर्ण रसायन कथा, भक्तों के संग में रहकर जब हम भागवत सुनते हैं वो रसायन कथा है, टॉनिक है हमारे कर्णों के लिए। टॉनिक तो है लेकिन श्रद्धा से प्रेम में पहुंचने के लिए क्या बताया है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। श्रद्धा से प्रेम का जो लेवल है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगता है, एकदम से नहीं। हम लोग जमीन पे खड़े हैं, बोले हम जी हम टॉप फ्लोर में पहुंच गए, कल्पना करो, कल्पना करने से थोड़ा टॉप फ्लोर में पहुंच जाओगे, या तो सीढ़ियों से जाओ या लिफ्ट में जाओ, जाना तो पड़ेगा ना सब फ्लोर से गुजर के। भौतिक जगत में ये भी यही प्रोसेस है जो आध्यात्मिक जगत में, कोई PhD तो जन्म लेते PhD बनता है क्या? कल्पना करो तुम PhD हो। हाँ कल्पना कर रहा हूं मैं पास हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी परमानेंट हेड डैमेज, ये कल्पना तो मैं कर सकता हूँ, इस तरह तो मैं सोच सकता हूँ PhD हूँ मैं, परमानेंट हेड डैमेज हो गया मेरा ये सोचकर कि मैं PhD हूँ, ऐसा सोचना होता है कोई PhD? हाँ विशेष लोगों को कृपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कई अज्ञानी लोग हैं चौथी पास हैं वो बन गए राष्ट्रपति बन गए या मंत्री बन गए, तो कोई यूनिवर्सिटी उनको ऑनरेरियम डिग्री दे देता है कि आप डॉक्टर सो एंड सो हैं करके, है कि नहीं, वो इक्के दुक्के के ऊपर होती कृपा, कृपा सिद्धि जिसको कहते हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के साथ होता है क्या ऐसे? ऑनरेरी डिग्री कितने लोगों को दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा? हम में से कोई है यहाँ पर जिसको मिला ऑनरेरी डिग्री? तो जनरल प्रोसेस क्या है, जनरल प्रोसेस क्या है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये थोड़ा ना कि आप केमिस्ट बन गए तो इसका मतलब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, डॉक्टर बनने के लिए फिर अलग प्रोसीजर है, केमिस्ट बनने के लिए अलग प्रोसीजर है। आप कल्पना करो 5 साल के बाद आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, आप सोचो आप प्रधानमंत्री हो, लेकिन क्या आपको इलेक्शन में लड़ना पड़ेगा? सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी खड़े होने के लिए इलेक्शन में, और करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, नकली तरीके से वोट खरीदने पड़ेंगे, है कि नहीं, तब जाके आप पार्लियामेंट में घुसोगे, MP या MLA बन जाओगे, फिर कहाँ कहाँ जाके धक्के मार मार के कई जगह पे किसी गांव में जाके जिले के इंचार्ज बन जाओगे, प्रधानमंत्री बनना है आपको। तो कोरी कल्पना करने से कुछ नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जिस तरह से ग्रेजुअल प्रोसेस है, भौतिक जगत में भी ऐसा ही है, बीज बोते ही थोड़ा फल निकलता है, निकलता है। मैंने आम का बीज बोया है, देखो आम का पेड़ निकल आया, देखो आम निकल रहे हैं, आम गिर रहे हैं ऊपर से, कल्पना करो मीठे मीठे आम, वो केवल चैतन्य महापुरुष कर सकते हैं, शिवास आंगन में उन्होंने किया। ऐसे ही बीज बोया, एकदम पेड़ उगाया और फल निकल आए, आम बांट भी दिया महापुरुष ने, और एक साल तक आम बांटते रहे, 200 आम निकल रहे थे डेली, बिना छिलके के और बिना गुठली के, वो महापुरुष कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, इस जगत में तो होता नहीं ऐसा। और आम के सीजन में आम मिलता है, या तो फिर इंपोर्ट कराओ नकली काम करके। इसलिए कहने का अर्थ यह है, जब भौतिक जगत में ऐसा हो रहा है, हर चीज के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप बिजनेस खोलते थोड़ा ना आपको प्रॉफिट कमाते हैं, कितने धक्के खाने पड़ते हैं आप, नहीं कोई बिजनेस भी कर रहा है तो इस प्रकार कोई भी परफेक्शन अटेंड करने के लिए, मटेरियल हो या स्पिरिचुअल, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कभी छलांग मार के नहीं जा सकते कहीं भी। तो उसको हम पॉलिटिक्स सोचते हैं, जो हमारी अनुसार नहीं चलती है उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। एक बार किसी भक्त ने पूछा एक महाराज से, महाराज जी क्या है ना कि यहाँ पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो महाराज ने कहा हाँ इसलिए कि तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है। देखिए ये बात निश्चित रूप से बस सही है। इनका प्रश्न यह है कि क्यों ऐसा होता है कि भक्त जो है उसको कई बार, कई भक्तों का ऐसा महसूस होता है कि हमें कई बार तो श्रद्धा होती है अधिकारियों में, और कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारा ध्यान नहीं रखा जाता, हमारा केयर नहीं किया जा रहा। लेकिन हमें साथ में भी देखना है, ये बात सही है कि भक्तों का केयर होना चाहिए और के प्रति हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, केयर करना चाहिए। लेकिन साथ में हमें केयर होता क्या है ये भी समझना है। अब समझ रहे हैं, एक तो हो गया केयर करना कि आपको हम लोग ये बताते रहें कि आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप दवाई लो, आप डॉक्टर के पास जाओ, तो उसका एक परिणाम क्या होगा पता है? वो वाकते में व्यक्ति सोने लगा कि मैं बीमार हूँ। जहाँ तक देखा हमारे गुरु महाराज के साथ, जब भी कोई भक्त जाता है बोलता है कि मैं बीमार हूँ, महाराज उसको यही कहते हैं तुम्हारी 99% जो प्रॉब्लम है वो मन की है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। और आजकल महाराज की बात तो छोड़िए, आजकल के डॉक्टर्स, मैंने खुद सुना है कई कार्डियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर खन्ना एक है अपोलो हॉस्पिटल में, उन्होंने महाराज की इतनी तारीफ की, उन्होंने कहा मैं तो हैरान हो जाता महाराज को देखकर, उनका ये हो गया एंजियोप्लास्टी हो गया दूसरी बार, उसके बावजूद भी महाराज इतने एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं, इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और कोई उनकी तरह उनके बदले होगा तो खटिया पकड़ लेगा वो तो, और उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, उनको पता नहीं कहाँ कहाँ याद रहता है, क्या क्या याद रहता है। वो महाराज की बहुत तारीफ कर रहा था, मैं तो हैरान हो गया। और वो कहने लगे मेरा भी ये अनुभव है स्वयं का, वो बोल रहे थे मैंने तो बहुत पेशेंट्स को ट्रीट किया, मैं खुद हार्ट सर्जन हूँ, मैंने देखा है हार्ट की प्रॉब्लम जितने लोगों को आती है 90% जो प्रॉब्लम है उनकी मन की होती है। और ये एक डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, ये कई डॉक्टर्स बोल रहे हैं। आजकल कई लोगों के पेट खराब रहते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि आपके जो पेट की समस्या है ये साइकोजेनिक डिजीज है, ये ब्रेन के कारण हो रहा है, टेंशन के कारण हो रहा है, आपको टेंशन के कारण आपका पेट खराब हो रहा है, बोलते ही नहीं बोलते डॉक्टर्स। तो ये देखिए, तो अब जो डॉक्टर ऐसा कहेगा बेकार डॉक्टर है, दवाई तो कोई दे नहीं रहा, बोल रहा है मेरा मन खराब है, इसको कुछ पता नहीं शायद इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन वास्तव में बात बिल्कुल सच है। तो इसलिए हमें देखना कि असली केयर कंपैशन होता क्या है, ये हमें समझना है। एक कंपैशन ये है कि डॉक्टर बोल दे आओ हाथ दिखाओ अपना, है ना, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, और दूसरा डॉक्टर है बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, कैसे, लाओ जी छुरी कांटा लाओ अभी काटता हूँ उसको। तो नहीं 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 नहीं, ये कैसा डॉक्टर है, जैसे एक बच्चा जाता है, जब मां ले जाती है बच्चे को, इंजेक्शन देता हूँ, बच्चा कैसा रहता है, और रो रहा है रो रहा है, होता कि नहीं, और फिर भी माँ जो उसके वो बच्चे को इंजेक्शन लगवा रही है, तो माँ क्या क्रूर है बताइए। कई बार बच्चा ब्लेड उठाता है और खेलता है, उसकी माँ मना करती है मत खेलो ब्लेड से, मत खेलो, फिर भी खेल रहा है, एक जोर से चांटा मार के दबा के अपने आप ही फिर से रोता है। लेकिन वही कंपैशन उसके लिए, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, जब भी स्कूल जाता है तो रो के जाता है, फिर भी मार मार के उसको स्कूल भेजते हैं, मतलब कैसे माता पिता है मेरे को स्कूल भेज रहे हैं, मैं खेलना चाहता हूं। तो कंपैशन की पहले असली परिभाषा में देखनी पड़ेगी, केयर का असली परिभाषा, जो केयर कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, आप सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए, आप भक्तों के साथ बैठ के जप करिए, आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए, यही है सॉल्यूशन हर मेटेरियल प्रॉब्लम का। मेटेरियल प्रॉब्लम का मेटेरियल सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, वो केवल आर्टिफिशियल है, वो केवल सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को मेंटली, उससे कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो सकता। हर प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है स्पिरिचुअल, जहां हम लोग स्पिरिचुअली अपने आप को वेल इक्विप करेंगे, साधना अच्छी रखेंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और श्रवण कीर्तन में इंटरेस्ट लेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, और कोई आपको कह रहा है करने के लिए बार बार और हम नहीं कर रहे हैं, तो गलती हमारी है, वो व्यक्ति तो कह रहा है आपको, वो तो बता रहा है, डॉक्टर तो बता रहा है आपको, आप दवाई लो दवाई लो, बोले तो दवाई कड़वी है, दवाई कड़वी है, दवाई कड़वी, इतनी सारी दवाइयां दे दी, मैं नहीं खाता, मैंने तो बीमारी कैसे दूर होगी। प्रभुपाद ने कहा हमें ट्रीटमेंट के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मेडिसिन और डाइट। हम लेना नहीं चाहते तो दोष किसका है, हमारा है ना, पेशेंट का दोष है ना, डॉक्टर का थोड़ा दोष है। डॉक्टर देखेगा मैं तो आपको दवाई दे सकता हूँ, मैं तो आपको बता सकता हूँ इलाज क्या है, आपके ऊपर है दवाई लेना। आप डाइट का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जैसे हमारे वैद्य जी हैं वो यही कहते हैं, जितने भी डिवोटीज उनके पास जाते हैं बोलते हैं आप लोगों का शेड्यूल ऐसा है, कभी रात को लेट सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इतना गैप है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इतनी बार खाओ ये करो, आप नहीं सुनते तो मैं क्या कर सकता। तो बेसिकली क्या है कि मेन प्रॉब्लम होता है माइंड का, हम सबको जो मेन प्रॉब्लम मेंटल डिजीज है। कलयुग में 99.9% लोग मेंटल पेशेंट्स, ये तो आप मेडिकली भी प्रूव हो जाएगा, प्रूव हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है कि 2020 तक मैक्सिमम केसेस होंगे डिप्रेशन के। तो जब भक्ति में भी आते हैं हमारे पास, हमारी मेंटल प्रॉब्लम ही होती है। और हमारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कौन है, हमारे गुरु, और गुरु से बड़ा कोई साइकेट्रिस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली जानते हैं हमारे माइंड का स्टेटस क्या है और उस माइंड को ठीक करने के लिए वो हमें मंत्र दे रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और हमें साधन दे रहे हैं, प्रोसेस दे रहे हैं। वो हम नहीं फॉलो करेंगे तो गलती हमारी है कि नहीं, क्योंकि हम वैदिक भक्ति के कड़क नियमों से बचना चाहते हैं और नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो तुरंत अपने आप को हम बोलते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमें तो फल मिल गया है, क्योंकि हम तपस्या नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कलयुग में 5-स्टार रागानुगा भक्ति, हम चाहते हैं आराम से ना आकाश से कृष्ण प्रेम टपक जाए और हम मुंह खोल लें। ऐसा कभी हुआ क्या आज तक, कभी हुआ ऐसे कि बिना किसी तपस्या के बिना किसी प्रयास के? एक भी उदाहरण बता दीजिए कि कोई भक्त बन गया हो, ऐसे परफेक्शन मिल गया हो। सब ने तपस्या की है, श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने, हालांकि सिद्ध पुरुष थे नित्य सिद्ध, उन्होंने 9 साल श्रीधाम मायापुर में भजन कुटीर बना के लगातार 9 साल 100 करोड़ नाम लिए उन्होंने, जस्ट टू प्यूरिफाई द एंटायर यूनिवर्स। और उसके बाद 1918 में उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, डेली 3 लाख नाम 9 साल के लिए। बारिश होती थी मायापुर में, कितनी बारिश होती है, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर छतरी लेके, एक हाथ में छतरी और एक हाथ में माला लेके जप करते थे, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं माय गुरु महाराज वॉज इन एक्सटेसी, ही वॉज डांसिंग इन एक्सटेसी इन द मिड्स ऑफ पंचतत्व, बट वन डे ही वॉज इंस्पायर्ड, ही वॉज ऑर्डर्ड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु, ही लेफ्ट द एसोसिएशन ऑफ पंचतत्व एंड ही वेंट टू कैलकटा टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है, अमार आज्ञा गुरु ही तारा इस देश, जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रचार कौन कर रहा है, इन्हीं लोगों ने तो प्रचार किया। महाप्रभु का जन्म स्थान किसे पता लगाया, ठाकुर भक्तों ने पता लगाया, हमारे आचार्यों ने तो सारी लीला स्थलियों का पता लगाया, नवदीप मंडल में ब्रज में षट गोस्वामी ने पता लगाया, हम उस परंपरा में। तो इन्होंने जो प्रोसेस दिए ना आचार्यों ने, वो सबसे प्रमाणिक प्रोसेस है नाम जाने के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी इस हरे कृष्ण महामंत्र से, यही साधन है और यही साध्य है, और कोई साध्य नहीं है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो लोग हमें कंफ्यूज करेंगे, है कि नहीं। और जो बेचारे कोमल श्रद्धा वाले हैं, नए लोग हैं, उनकी खिचड़ी बन जाती है ना, बेचारे घर के रहते ना घाट के, कहीं के भी नहीं रह पाते हो। बहुत सावधान रहना चाहिए हमें। आध्यात्मिक जीवन को इसलिए शुद्ध धार बताया गया, तलवार की धार बताया गया, जैसे रेजर होता है, अच्छा शेव भी हो सकता है, काटता भी है, खून भी निकलता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम सही दिशा का अनुगमन करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, सही मार्गदर्शन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धाम जाएंगे। प्रभुपाल से पूछा कि प्रभुपाल क्या इस्कॉन में सब धाम जाएंगे, हमारे महाराज ने पूछा मायापुर में, प्रभुपाल ने कहा सब नहीं जाएंगे, प्रभुपाल ने कहा केवल वो जाएंगे जिनकी पूरी श्रद्धा है और पूरे शरणागत हैं गुरु की सेवा में, केवल वही जाएंगे। बाकी सबको वापस आना पड़ेगा दोबारा जप करना। तो धाम जाना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इतना चीप भी नहीं है। और जितने लोग शरणागत हुए जिन्होंने सेवा की वो धाम गए, इस संस्था में रहकर भी धाम गए। प्रभुपाद खुद इसके प्रमाण है, प्रभुपाद ने खुद बोला है जैनंद प्रभु के लिए, उनके शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने उनको चिट्ठी लिखी, उनके शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद लिखते हैं अगर तुम्हारे अंदर कोई भौतिक इच्छा रह गई हो तो मैं ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो गई होगी, लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में कोई प्रकार किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से तुम धाम गए होगे। लेकिन तुम्हारे कार्यकलाप को देखते हुए, अंतिम समय में तुम्हारी नाम भी सुन रहे थे और तुम्हारी सेवा को देखते हुए, मुझे लगता है इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम कृष्ण के बाद वापस जा चुके हो। और प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया सबको कि आज के बाद इस्कॉन में उनका हमें तिरुभाव बनाना चाहिए, वैश्य कैलेंडर में उनका नाम डालने के लिए बोला प्रभुपाद ने। और रथयात्रा में प्रभुपाद ने कहा कि उनका फोटो लगाने के, आज भी बंबई में जो रथयात्रा होती है जैनंद प्रभु का फोटो लगाते हैं रथ के ऊपर, क्योंकि वो सबसे पहले जो जगन्नाथ जी का रथ बनाया इस्कॉन में वो जैनंद प्रभु ने बनाया। लुकुमिया हो गया था उनको, ब्लड कैंसर, उनके घर वालों ने पता नहीं कितने हजारों डॉलर भेजे थे, $5,000 या उससे ज़्यादा भेजे थे, उन्होंने सारा पैसा प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद लिख रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ माई डिसाइपल, प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये पहला व्यक्ति था जयनंद प्रभु वॉज द फर्स्ट डिवोटी टू गिव मी $5,000 टू पब्लिश भगवद गीता। और प्रभुपाद जब भी आते थे जयनंद प्रभु के बारे में पूछते थे सबसे पहले। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिवोटीज इन इस्कॉन, 24 आवर्स सेवा, रात के 12-12 एक बजे तक वो रथ बना रहे होते थे। सुबह फिर पूरी मॉर्निंग पूरी साधना भी करेंगे, फिर पूरे दिन शहर में टैक्सी चलाएंगे। ओहायो यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक किया था, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया था, लेकिन वो उस इलीट क्लासेस में नहीं जाना चाहते थे, वो सिंपल लाइफ लेना चाहते थे। तो वो टैक्सी चला के पैसा कमा के मंदिर चलाते थे और मंदिर के सारे डिवोटी जो है डेली हरिनाम में जाते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रभुपाद के टाइम में ये था, एक विशेषता ये थी कि डेली हरिनाम में जाते थे भक्त लोग अमेरिका में। जैसे न्यूयॉर्क में 60 ब्रह्मचारी रहते थे, उसमें 58 ब्रह्मचारी डेली जाते थे हरिनाम में डेली। तो हम लोग भी उसी दिशा में धीरे धीरे हम भी बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारा भी आगे विजन यही है कि डेली नहीं तो कम से कम 3-4 दिन से शुरू करें और धीरे धीरे उसको भी डेली भी करें। ऑलरेडी हमारे पिछले हफ्ते जैसे 3-4 हरिनाम हो गए। तो हम लोग एक छोटा टीम बना रहे हैं, उनको गाड़ी भी दे देंगे, साउंड सिस्टम दे देंगे, और हम चाहेंगे साउथ दिल्ली में हर कॉलोनी में जाके डेली वो हरिनाम कर लें। तो ये प्रोसेस है, ये रियलाइजेशन का प्रोसेस है कलयुग में। कलयुग का प्रोसेस है रियलाइजेशन का हरिनाम, यही शास्त्रों का मालूम है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे राम, संकीर्तन की जय।